नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। देश में वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। वृद्धि दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। यह अनुमान आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त किया। सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि की मजबूत गति को बनाए रखा है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित कुल महंगाई दर घटकर 1.7% रह गई है, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में सुधार रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से देश में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है। नई दिल्ली में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री नागेश्वरन ने कहा कि बेरोजगारी दर तब के 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। उन्होंने कहा कि महिला श्रम बल भागीदारी में लगभग 18% की वृद्धि हुई है। श्री नागेश्वरन ने कहा कि वर्ष के पहले 9 महीने में बेरोजगारी दर लगातार 5.4% से घटकर पहली तिमाही में 4.9% हो गई है। उन्होंने कहा कि अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी है। श्री नागेश्वरन ने कहा कि कोरोना से पहले वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.4% थी और वित्तीय वर्ष 2025 में ये 6.5% थी और इस साल इसकी 7.4% रहने का अनुमान है।
कोरोना काल से पूर्व के औसत की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में देखें तो वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% थी और वित्त वर्ष 2025 में 6.5% थी। इस वर्ष इसके 7.4% रहने का अनुमान है। निजी अंतिम उपभोग व्यय में इस वर्ष 7% की वृद्धि हुई है। वहीं सकल स्थिर पूंजी निर्माण वित्त वर्ष 2025 की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करेगा और निश्चित रूप से बैंकिंग और कॉर्पोरेट संतुलन वर्ष 2012 से 2020 की अवधि की तुलना में कई बेहतर होगा, जब यह औसतन प्रतिवर्ष मात्र 6.3% था।
श्री नागेश्वरन ने कहा कि वास्तविक रूप से सकल स्थायी पूंजी निर्माण का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025 की तुलना में काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता आत्मविश्वासपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट सत्र के दूसरे दिन आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्ज्वल है उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लोकतंत्र तथा जनसंख्या विश्व के लिए आशा की किरण है और अब देश आकर्षण का केंद्र बन गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से आग्रह किया है कि वे सशक्त संसदीय निगरानी रखने और उच्च सदन में सूचीबद्ध कार्यसूची का ठीक से संचालन करने के लिए उच्चतम संसदीय मर्यादा बनाए रखें। राज्यसभा सत्र के प्रारंभ में शून्यकाल के दौरान अपने आरंभिक भाषण में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वे इस सत्र को सार्थक बनाने तथा समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में एक ठोस कदम साबित करने के लिए सभी संसदीय दलों के सदस्यों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 को स्थगित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत कनाडा के विकास तथा समृद्धि के लिए सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। नई दिल्ली में कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉजसन से हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए उस पर मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है और अगले महीने राष्ट्रीय चुनाव से पहले सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।